الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم مثالی بیٹا کا عنوان پڑھتے ہیں، مثالی مرد کی کتاب میں سے، جو کہ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ کے بیانات پر مشتمل ہے. مثالی بیٹے کے موضوع میں ہم جو ہے وہ پچھلی دفعہ والدین کی نافرمانی کی سزا احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ پڑھ رہے تھے، اور آج ہم نے ان باتوں کو پڑھ کے 8 باتوں سے اجتناب کرے، یہ ذیلی موضوع جو ہے وہ شروع کرنا ہے. تو 8 باتوں سے اجتناب کریں، یعنی بیٹے کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ معاملے میں ان باتوں سے بچے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب ایک اور ریسرچ سن لیجئے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کتاب میں مثالی مرد اور مثالی عورت ان دونوں سلسلہ بیانات کے اندر حضرت نے جو ہے وہ ویسٹرن ریسرچرز کو ریفر کیا ہے کہ فلانی یونیورسٹی میں یہ ریسرچ ہوئی، انہوں نے یہ بتایا. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، کہ جس کی وجہ سے حضرت نے ان ویسٹرن ریسرچرز کو جو ہے نا وہ ریفر کیا. تو فرماتے ہیں کہ ایک اور ریسرچ سن لیجئے کہ 8 things not to do، وہ 8 باتیں جن سے ماں باپ بہت دکھی ہوتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، جو نہیں کرنی چاہیے. ان 8 باتوں سے اجتناب اولاد کو کرنا چاہیے. نمبر 1، کہ بیٹا باپ کو کہے ہاؤ کین یو ناٹ ریممبر دیٹ. ٹھیک ہے، کہ آپ کو کیسے یہ بات یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس ترش انداز میں کہے کہ آپ کو، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں ہے، بات یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی پیار محبت کے انداز میں نہیں، بلکہ ایک ٹیزنگ اور جو ہے وہ ایک کمپلیننگ انداز میں باپ سے یہ بات کہی جائے. تو فرماتے ہیں کہ یہ فقرہ کبھی نہ بولیں، اس لیے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اگر یادداشت ختم ہو چکی ہے تو یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ ان کو احساس دلائیں گے تو ان کو دکھ ہوگا، لہٰذا ماں باپ کو یہ کبھی نہ کہیں کہ آپ کو یہ بات کیوں یاد رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بڑھاپے کے اندر جو شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے، شارٹ ٹرم میموری یعنی کل کی بات، بلکہ صبح کی بات، بلکہ چند گھنٹوں پہلے کی بات، یہ شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے، یہ جو ہے نا وہ لوز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے، یہ خراب ہو جاتی ہے، جبکہ لانگ ٹرم میموری جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، عمومی طور پر یہی مشاہدہ ہے، اور ایون ایکسپرٹس نے بھی یہی کنکلوژن نکالا ہے کہ لانگ ٹرم میموری ختم نہیں ہوتی ہے. لانگ ٹرم میموری کا مطلب یہ کہ ان کو اپنے لڑکپن کی باتیں یاد ہوں گی، کئی کئی سال پرانی باتیں ان کو یاد ہوں گی، اور وہ ایسے بیان کر رہے ہوں گے جیسے کہ کل کی بات ہے. بہت سے نوجوان جو ہے نا اس کو سن کر کے حیران رہ جاتے ہیں، جن کو کہ زیادہ تفصیلات نہیں پتہ ہوتیں. کبھی آئے کسی بوڑھے صاحب کے پاس، تو انہوں نے جو ہے نا وہ آج سے 30 سال پرانی کوئی بات بتا دی، تو بڑے حیران ہوتے ہیں، اچھا ان کو ابھی تک یہ والی بات یاد ہے. ٹھیک ہے، تو یاد تو خیر آپ کو بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کئی صحیح یعنی دہائیوں پرانی باتیں ہمیں بھی یاد ہوتی ہیں، ابھی ہم بڑھاپے کی اس دہلیز کے اوپر نہیں پہنچے پھر بھی. تو یہ یاد ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ یاد تو وہ ان کو بھی ہوتی ہیں، ہمیں بھی یاد ہوتی ہیں، لیکن وین کمپیئر ٹو شارٹ ٹرم میموری جو ہے نا، شارٹ ٹرم کی چیزیں ان کو یاد نہیں آ رہی، تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں سن کر کے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے جو کہ قریبی ہوتے ہیں، جن کو خدمت کرنی ہوتی ہے، تو وہ پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ غصہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اتنی پرانی جب باتیں یاد ہیں تو کل کی بات کیوں نہیں یاد ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے. تو ان کو جو ہے نا وہ اس کا احساس مت دلائیں کہ جی آپ جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات یاد نہیں ہے، کل تو آپ کو بتائی تھی. दूसरी बात जिसको अवॉइड करना चाहिए वो ये, यानी कि अवॉइड करना है, चाहिए का बड़ा हल्का लफ्ज नहीं है बल्कि जरूरी से करना है, वो ये उनको कहना कि यू कुड हैव डन इट इफ यू ट्राइड टू, या इफ यू हैड ट्राइड, ठीक है, कि अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लेते तो आप ये काम कर सकते थे, थोड़ी सी हिम्मत कर लेते, या अगर आप थोड़ी सी कोशिश करते ना तो आप ये काम खुद से कर सकते थे, ठीक है। तो इसकी वजह क्या बनती है कि वो कोई काम करना चाह रहे थे नहीं कर सके, अब जो है ना वो औलाद जो है वो इस तरह की बातें जुमले जो है ना उनको बोल देती है। कुछ लोगों के, कुछ औलाद के दिल में ये भी नीयत होती है कि वो अगर खुद से हिम्मत करके काम करते रहेंगे तो ये उनके अपने लिए अच्छा होगा, उनके उनका बुढ़ापा जो है वो इतनी जल्दी उनके ऊपर तारी नहीं होगा, उनका अपना बदन जो है वो एक्टिव होगा, और जो है ना वो बिल्कुल ही बिस्तर से नहीं लग जाएंगे, जो कि उनके लिए अपने, उनके अपने लिए अच्छा है। तो अक्सर के ना नीयत अच्छी भी होती है, इस तरह की नीयत होती है, लेकिन द पॉइंट इज जो कि इस, यानी इस पॉइंट में जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि इवन अगर आपकी नीयत अच्छी है भी और आप इसी नीयत से उनको जो है वो एक्टिव देखना चाह रहे हैं ताकि उनके अपने लिए जो है वो आसानी रहे, तो इसलिए भी इस किस्म के जुमले बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस किस्म के जुमले बोलने की जरूरत नहीं है, इसके बगैर भी आप उनके लिए एक्टिविटी का जो है ना वो सामान रख सकते हैं, सामान कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको जो है वो कोई ऐसी बात उनको कह सकते हैं, पहुंचा सकते हैं उन तक ये बात जिससे कि उनका दिल दुखे नहीं। तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बुरे अंदाज से और फ्रस्ट्रेट होकर के और चिल्ला करके इस किस्म की बातें करने से मना किया जा रहा है। नीयत चाहे अच्छी हो चाहे नीयत बुरी हो, बोथ वेज, दोनों सूरतों में झल्ला करके बात करना और ऐसे टीजिंग किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो फरमाते हैं कि माँ बाप को ये तजवीज़ देने की ज़रूरत नहीं होती, उनको इस बात से तकलीफ होती है। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बुढ़ापा ऐसी बीमारी है कि बंदा बता भी नहीं सकता कि मुझे कहाँ तकलीफ है, कई मरतबा तो पूरा जिस्म ही तकलीफ की हालत में होता है, हत्ता कि एक आदमी बैठा हुआ है वो चाहता है कि मैं लाइट जला लूं मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उठ के बिजली का बटन दबा सके, छोटा सा काम है लेकिन बुढ़ापे की वजह से कई मरतबा ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में अगर बच्चा कहे कि आप थोड़ी सी हिम्मत करते ना तो आप ये कर सकते थे, तो इससे माँ बाप को दुख होता है, लिहाजा ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यानी आप खुद से काम कर सकते थे, आपने क्यों किसी दूसरे को बुलाया, आप क्यों जो है वो, यानी कुछ होता है कि जी कमरे के अंदर हैं और हर वक्त जो है वो कोई उनके साथ मौजूद नहीं हो सकता तो बेल रख देते हैं, ठीक है, हमारे घर में भी वाल साहब के साथ जो है वो बेल का जो है वो बटन रखा हुआ है और बेल जो है वो दूसरे कमरे के अंदर रखी हुई होती है, तो अब बार बार अगर बेल बजा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ना वो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, और भाई आप क्यों बार बार जो है वो दूसरे बंदे को तंग कर रहे हैं, तो यानी आप खुद भी ये काम कर सकते थे, बेल बजा करके जो है वो किसी को काम छोड़ करके बुलाने की क्या जरूरत थी, ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, लेकिन इसमें भी जो है ना वो इस किस्म का जुमला बिल्कुल भी ना बोले, ठीक है, तो या तो खामोशी के साथ जो है वो उनका काम कर दें, या अगर कोई बात उनको समझानी भी है तो भी बेहतर अल्फाज में और बेहतर अंदाज में उनको बताएं, तो बस यही असल मकसद है। तो फरमाते हैं कि तीसरा फिक्रा जिसको कि नहीं बोलना है वो है कि आई शोड यू यस्टरडे हाउ टू यूज दिस मशीन, कि मैंने आपको कल ही तो बताया था कि ये मशीन कैसे इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो किचन की कोई मशीन हो, अगर वो किचन में जाने के शौकीन है, किचन में खुद से जो है वो माइक्रोवेव वगैरह करना है या जो भी उनको करना है, तो किचन की कोई मशीन उनको बता दी थी कि जी ऐसे ऑपरेट होती है, उमूमी तौर पर माइक्रोवेव या ओवन इस किस्म का कुछ ना कुछ होता है, जूसर वगैरह, मोबाइल हो, आजकल जो है वो चूंकि सेलफोन का जमाना है और आप जानते ही हैं कि बूढ़े लोग भी जो है वो इस सेलफोन से बचे हुए नहीं है, तो इस वजह से सेलफोन जो है वो बूढ़ों के हाथ में भी होता है, तो उसमें फिर जाहिर है वो उनको, यानी हाथ में तो होता है लेकिन बहुत सारी चीजें उनको समझ में नहीं आ रही होती है कैसे करना है। तो तो उसमें फिर वो मदद चाहते हैं, छोटा कोई बच्चा आकर के बता दे, कोई बड़ा आकर के दूसरा बता दे उनको। तो फरमाते हैं कि किचन की कोई मशीन हो, मोबाइल हो या कोई और ऐसी चीज़ हो, और आपने अपने वालिद को बताया कि आपने यूं करना है, लेकिन अगर वो दोबारा फिर आपसे पूछते हैं तो आप उनको ये मत कहें कि मैंने आपको कल ही तो बताया था कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। माँ बाप भूल जाते हैं, इसलिए अगर वो दोबारा पूछें तो दोबारा बता देना चाहिए। ठीक है, लैपटॉप वगैरह भी लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं बहुत, तो बस जितनी दफा पूछें उतनी दफा जो है ना वो बता दें। लेकिन कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर इंसान को अपने आसाब के ऊपर काबू नहीं है, अपने जज्बात के ऊपर काबू नहीं है, अपने गुस्से के ऊपर और अपनी जुबान के ऊपर काबू नहीं है, तो मुमकिन नहीं होता कि जब वो बार बार एक ही बात पूछ रहे हो, बार बार एक ही बात करने को कह रहे हो ना, तो उस वक्त जो है वो उनको झिड़का ना जाए। आसान काम नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम होता है, करके दिखाए कोई। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना, ये तो रोजमर्रा की चीज है। जिसके घर के अंदर बूढ़े माँ बाप होते हैं, एक हों या दोनों हों, तो उनके लिए तो ये यानी दिन रात की चीज होती है, और बल्कि यानी लिटरली दिन रात की चीज होती है। क्यों? इसलिए कि रात को जो है ना वो आपके तो सोने का टाइम होता है, उनके जागने का टाइम होता है। ठीक है, तो उनको तो रात को भी आपकी अटेंडेंस चाहिए। दिन में तो चले आप जाग रहे होते हैं ना, दिन में या तो वो सो रहे होते हैं या जाग भी रहे होते हैं, तो अजीब गरीब किस्म की कैफियत में होते हैं, क्योंकि वो रात को भी जागे हुए होते हैं। अब दिन को भी वो अगर जाग रहे हैं तो फिर उनका पारा जो है ना, फिर वो यानी 100 से ऊपर पहुंचा हुआ होता है। ठीक है, तो दिन भी खराब और रात भी जो है ना वो भी, कभी बार बार बेल बजा रहे हैं तो कभी जो है वो बस ऐसी आवाजें निकाल रहे हैं, कभी जो है वो कुछ और मसला हो गया, गिर गए। ठीक है, तो रात को कई कई दफा उठना भी पड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है ना, वो अपने जुबान के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर काबू रखना, ये बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। तो पिछली क्लास में भी बात हुई थी, और शायद उससे पहले भी कई दफा बात हो चुकी है, कि भाई अपने मिजाज के ऊपर जो है ना वो मेहनत करनी जो है ना, ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है, ये कोई मुस्तहब बात नहीं है कि कर लिया तो सवाब होगा, नहीं किया तो कोई मसला नहीं है। नहीं, ये इंसान को जो है ना वो बहुत बड़ी तबाही के गड्ढे में गिरने से रोकने के लिए लाजमी होता है। ये लाजमी है ये कि अपने रूहानी बीमारियों का इलाज करे, अपने मिजाज के ऊपर काबू करे, अपनी जुबान के ऊपर काबू करे, कम बोलना सीखे। हमारे यहाँ जो है ना वो किस तरह शैतान ने हमें धोखे में डाला हुआ है, और शैतानी तहजीब ने जो कि यूरोप अमेरिका से हमारे पास आई है, धोखे में डाला हुआ है कि स्पीकिंग कंसिडर्ड समथिंग जो है ना, पता नहीं क्या है ये, बोलना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। और उसके लिए जो है वो जमीन आसमान के कुलाबे मिला देते हैं, औलाद को बोलना सिखाओ बोलना सिखाओ, ये जो है ना वो बोलना नहीं सीख रहे, और उसको बोलना नहीं आता, और ये जो है वो कुछ कह नहीं सकता, और ये नहीं, यानी अजीब व गरीब किस्म का दिमाग खराब किया हुआ है हमारा उस तहजीब ने, और सारे के सारे जो है वो उस तहजीब के रेले के अंदर बह चुके हैं, और फिर उसके ऊपर अपने आप को अच्छा मुसलमान कहते हैं, अच्छा उम्मती कहते हैं। राइट, नबी अलैहिस्सलाम की क्या तालीमात है, नबी अलैहिस्सलाम का क्या सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलाम ने किन चीजों को प्रायोरिटी दी है, मन समत आना चाह। इतनी छोटी सी हदीस है, क्या मैं याद नहीं रह सकती, क्या मैं याद नहीं रह सकती कि जो खामोश रहा वो ना निजात में रहा। कुरान मजीद में सूरह काफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें क्या फरमाते हैं, वमा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद, कि जुबान से कुछ नहीं निकलता सिवाय इसके के करीब बैठे हुए अतीत जो है ना उसको ले लेते हैं, नामे अमाल के अंदर लिख लिया जाता है। तो जितना जुबान का ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना फंसोगे, उतना फंसोगे। और हम अपनी औलादों को फंसाने के लिए उनको क्लासेस दिलवाते हैं, बोलने की क्लासेस, स्पीकिंग क्लासेस। बिल्कुल समझ उल्टी हो गई इस मुसलमान की, ज्यादा से ज्यादा दाढ़ी उगा लेने को समझता है कि इसने दीन को समझ लिया, बिल्कुल समझ उल्टी हो गई। तो बोलने की आदत यानी नहीं भी हो तो उसको भी सिखाते हैं, बोलना आना चाहिए भाई तुम्हें, और उसके लिए अजीब गरीब किस्म की दलीलें, खुद आना कि कभी क्लासेस नहीं, अच्छा कमा भी रहा है, अच्छा जो है वो उसको अल्लाह ताला ने रिस्क भी दिया हुआ है, अच्छा जो है वो उसको अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी हुई है, खुद कभी तुमने क्लासेस ली नहीं, नहीं कभी तुमने क्लासेस, राइट। हर कोई तो आईबीए नहीं गया होता क्लासेस लेने के लिए, मैनेजमेंट कोर्सेज के अंदर जो है उस किस्म की चीजें सिखाई जाती हैं, इंजीनियर्स को कब सिखाई जाती हैं इस तरह की चीजें।
लेकिन कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जिंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, लेकिन बस जो है ना वो मीडिया ने जो है वो सिखा दिया कि नहीं जी बोलना आना चाहिए, बोलना चाहिए। अब अपनी औलाद को सिखाने, भैया नहीं नहीं बोल बोल नहीं सकेंगे ना तो उनको कमाएंगे किधर से, कहां से कमाएंगे, कैसे कमाएंगे। तो बोलना इज नॉट गुड। अगर किसी के पास कुछ मवाद है अगले बंदे को समझाने के लिए, तो बोलने के लिए उसको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज सीखनी होती है। बस लैंग्वेज आती है, यू नो हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, फिर अल्लाह ताला बोलना सिखा देते हैं। कुछ अल्लाह पे भी छोड़ दिया करो, कुछ अल्लाह पे भी छोड़ दिया करो, राइट। हर चीज खुद ही करनी है, हर चीज खुद ही करनी है, और इसके अंदर जो है ना वो अपने लिए बेड़ा गर्क करना है, अपना और अपनी औलादों का, ठीक है। शोला बयान मुकर्रर हो या जो भी जो है वो उल्टी सीधी दलीलों के लिए, है ना, यानी वो पता नहीं क्या क्या जो है वो ड्रामे स्टार्ट किए हुए हैं। मुझे क्यों कोई बताने लगा आप में से पता नहीं क्लास में है कि नहीं है, पार्लिमानी अंदाज में जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है वो होती है हमारे क्या अब जो है ना वो डिस्कशंस होती हैं पार्लिमानी अंदाज में, कि एक जो है वो हज़्ब मुखालिफ बन जाता है और एक जो है वो हज़्ब इक़्तदार वाला बन जाता है। अब जो है ना वो लॉजिकली एक दूसरे को जो है वो काउंटर करना होता है, ये सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, राइट। ये कोई सिखाने की चीज है कि कैसे जो है वो, यानी वेदर यू बिलीव इट और वेदर यू डोंट बिलीव इट, यू स्टिल हैव टू पुट योर आर्ग्यूमेंट्स, दीन को छोड़ दो फिर तुम, ये जो धोखा मचा रखा है ना दीन का, छोड़ो इसको तुम, जो हो वही वही बन करके दिखाओ ना। दुनिया के तालिब हो, दुनिया के जो है वो तलबगार हो, दुनिया के लिए तुम जिंदगी गुजारना चाहते हो, दुनिया के लिए तुम सब कुछ करना चाहते हो, वैसे ही बन करके रहो। दोरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, दोरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर सरासर मोम हो जा या संग हो जा, राइट। एक बनना नहीं आता हमें, दीन का भी लिबादा ओढ़ना है और दुनिया की मोहब्बत को बुरा भी नहीं समझना। ये नहीं कि दुनिया की मोहब्बत से तौबा नहीं करनी, नहीं, बुरा भी नहीं समझना उस बात को, नादिम भी नहीं होना उसके ऊपर। तो जिसको बकबक करनी आती है ना, अब आप कह रहे होंगे इनको भी तो आती है बकबक करनी, मैंने कोई सीखी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तमगा मिला हुआ है मेरे हजरत की तरफ से कि इनको बोलना नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, इनको नहीं बात करनी, इनको बयान करना नहीं आता, बोलना नहीं आता नहीं, फरमाया था उन्होंने, कहा था इनको बयान करना नहीं आता, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जब इंसान को बोलना आ जाता है ना, फिर वो अपनी जुबान को काबू में नहीं रख सकता, फिर उसने ऐसी सिचुएशंस के अंदर बोलना है, ही जस्ट हैज टू से समथिंग, एंड व्हेन ही विल से समथिंग, शैतान जो है ना वो डुगडुगी नहीं मचा रहा होता, वो फारिग नहीं बैठा हुआ, उसने फिर जुबान से जो है ना वो ऐसे अल्फाज कहलवाने हैं कि जिससे कि जो है ना वो जहन्नुम के लिए ये क्वालिफाई कर जाए, जहन्नुम के लिए क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। तो माँ बाप के सामने तो भाई खामोश रहना पड़ता है, माँ बाप के सामने तो उनकी ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि जिसके ऊपर जो है ना वो इंसान को अपनी जुबान जो है ना वो बंद रखनी पड़ती है, अगर खुली मारे जाओगे, ठीक है। ये जो आप लेक्चर दे रहे हैं इसको लिखना चाहिए, पूरा लेक्चर तो आप लिख नहीं सकेंगे, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो जरूर से लिख लेने चाहिए ताकि उनको एक नज़र देख करके चीजें याद आ जाए, जॉट डाउन करना कहते हैं ना वो पॉइंट्स, तो ठीक है। दिस विल लीड टू राइट विंग एंड लेफ्ट विंग मीन्स डिबेटिंग इच अदर ऑन ईदर साइड, ठीक है ना। ये उकूबत खाने हैं, इंडोक्ट्रिनेशन कैंप्स हैं, जिनको जिनके अंदर जो है ना वो हम भी पल करके बढ़े हैं और जिनके अंदर अपनी औलादों को भी फखर के साथ भेज रहे हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर जो है ना वो ऑल इट दैट मैटर्स कि आप बाय हुक और बाय क्रूक अपना मकसद हासिल करें, बाय हुक और बाय क्रूक अपना मकसद हासिल करें। ये कुफर की तहजीब है, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है दीन इस्लाम के साथ, ठीक है। तो अगला फोर्थ फरमाते हैं कि एक और फिक्रा है कि डैडी यू ऑलरेडी टोल्ड मी दैट, यू ऑलरेडी टोल्ड मी दैट, यानी अब्बू आप ये मुझे पहले बात बता चुके हैं। तो कई मरतबा माँ बाप कोई बात करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमने बात की या नहीं की, लिहाजा वो दोबारा फिर बात कर देते हैं, तो बच्चे तंग होते हैं कि आपने पहले भी तो ये बात की है,
भाई अगर पहले भी बात की है और दोबारा फिर कर दी तो कौन सा नुकसान हो गया? आप खामोशी से सुन लें, ठीक है ना? और जैसे कि जी 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 बिल्कुल है? पिछली दफा भी बात हुई थी ना, माशाल्लाह हैदराबादी भाइयों से इतना तो सीखना चाहिए कैसे सर हिलाते हैं, है ना? अल्लाह उनको जदाए खैर दे, उन्होंने बड़ी काम की चीज सिखाई है हमें। जी 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 ठीक है, बस बड़ों के सामने जी जी एन जी सही है। अगर गलत बात कर रहे हैं तो भी जी, और अगर जो है ना सही बात कई मरतबा कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं तो भी जी। तो ये होता है, लोग नाराज हो जाते हैं तो भाई क्या हो गया? अगर वो नाराज हो गया तो क्या मतलब, कोई आसमान टूट के जमीन पे गिर गया, तारे टूट गए, क्या कुछ हो गया, भूचाल आ गया, जलजला आ गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गया, क्या हो गया अगर वो बंदा नाराज हो गया? यार भाई अल्लाह नाराज हो गया, इसकी तुम्हें फिक्र करनी चाहिए। और इस वजह से अगर तुमने किसी बंदे को नाराज किया है कि जिसके अंदर अल्लाह की नाराजगी भी है, फिर तुम्हें फिक्रमंद होना चाहिए। वरना वो नाराज हो, वो कुछ करे, कुछ उल्टा सीधा कह दे, अब क्या हो गया यार? अल्लाह ताला ने दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है? हर चीज को जो है वो अपने एक आजिज के दिल में ना, है ना, वो एक आज एक आइडिया आया है, आप लोगों के साथ शेयर कर लें तो वो पेपर आउट हो जाएगा। नहीं, नियत के साथ, अच्छी नियत के साथ ही शेयर करते हैं कि आपको पता है कि हमारी जो कौम है तो इंडियन पाकिस्तानी, तो हम जो है ना वो कचरा जो है ना वो डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं, कूड़े खाने में नहीं फेंकते, ये हमारी शान के खिलाफ है, ये हमारी कौमियत साजी के खिलाफ है, कुछ कुछ खिलाफ है ये हमारे। तो इस वजह से ना हमारे लिए लाजमी है कि हम जो रैपर्स हैं, जो प्लास्टिक है, जो कचरा है, वो डस्टबिन से बाहर फेंकें, ठीक है? तो हमने जरा एक थोड़ी सी एक पीछे पड़ गए हैं इस काम के बच्चों को जो है ना वो कचरा डस्टबिन में फेंकने की के लिए तैयार करना है, उनकी उनकी तरबियत करनी है। और जब हमारे कुछ नेक्स्ट गैदरिंग को इस किस्म की होगी इस तरह वगैरह के अंदर, तो वहां पे जो है ना वो हमने डस्टबिन को वाजह जगहों के ऊपर रखना है, एंड देन वी हैव वी विल ऑल मेक श्योर कि जी सब लोग जो है ना, बड़े हों या छोटे हों, वो कचरा डस्टबिन के अंदर फेंकें, बाहर कुछ नजर नहीं आना चाहिए। ये क्या भैया, आपने सारा कचरा जो है वो जमा कर दिया, पर आखिर में जो है वो कुछ लोग साफ करते फिर रहे हैं। पिछली दफा तो हमने बच्चों को खुद ही साफ करवाया था, लेकिन व्हाई डिड इट हैपन इन द फर्स्ट प्लेस, पहले क्यों ये हुआ ना? तो अब दिल में बात ही आ रही थी जो कि आज सुबह हजरत थानवी रहमतुल्लाह की किताब से जो पढ़ रहे थे उसका भी इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो बात ये दिल में आ रही थी कि कचरा खाना जो वो जो होता है ना, कचरे का ड्रम डस्टबिन, तो वो उसके ऊपर जो है ना वो किसी तरीके से हम लिख करके लगा दें कि क्या लिख के लगाए, हाँ फासिक का दिल, ठीक है? फासिक का दिल, सिनर्स हार्ट, ठीक है? सिनर्स हार्ट क्या मतलब कि जिस तरह से एक गुनाहगार इंसान, एक फासिक, एक फाजर इंसान जो है ना, जिस तरह से हर गंद जो है ना वो अपने दिल के अंदर डालता है, हर गंदी चीज हर वक्त अपने दिल को गंदा करता रहता है, ठीक है ना? गंदे जज्बात अपने दिल के अंदर, किसी से कीना, किसी से बुग़्ज़, किसी से नाराजगी, किसी से कुछ, है ना? तो इस तरीके से वो अपने दिल को गंदा करता रहता है, हर कचरा जो है वो दिल के अंदर, ठीक है? दिल ना हो गया, कचरा खाना हो गया, ठीक है ना? हमारा वाला कचरा खाना नहीं, वेस्ट का कचरा खाना, वो कचरे को कचरे खाने के अंदर ही फेंकते हैं। तो हर वक्त जो है वो गंदे जज्बात, बुरे जज्बात, और दूसरा क्या अंदा, दूसरा क्या तरीका होता है दिल को गंदा करने का? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक स्याह दाग पड़ जाता है, और अगर वो तौबा नहीं करता फिर गुनाह करता है तो फिर एक और दाग पड़ जाता है, फिर गुनाह करता है फिर एक और दाग पड़ जाता है, ठीक है ना? तो जिस तरीके से एक फासिक और फाजिर इंसान जो है ना वो अपने दिल को कचरा खाना बना करके रखता है, तो इसी तरीके से ये जो डस्टबिन है ना, ये हमारा कचरा खाना है, ये हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारा दिल ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। हम अल्लाह का शुक्र है, हमारे मशाइख अल्लाह ताला बेहतरीन जजा दे कि उन्होंने इस बात की अहमियत को समझा दिया कि भाई ये दिल जो है ना, ये तो वो चीज है तुम्हारे अंदर जिसकी तरफ तुम्हारा परवरदिगार रोजाना देखता है। इन अल्लाह ला यंजुरु इला सुअरिकुम व इला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला आमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे सूरतों और तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है और तुम्हारे आमाल की तरफ देखता है ना?
तो अल्लाह ताला अगर हमारे गंदे दिल को देखेंगे तो हमारे बारे में फिर क्या अल्लाह ताला के दिल में मोहब्बत आएगी, कि मेरे है ना कि जिसमें मैं समाता हूं उसको तो इसने गंद खाना बना करके रखा हुआ है, गंदे जज्बात भी पाले हुए हैं और गंदे जो है ना वो आमाल के जरिए से इसको काला किया हुआ है। ठीक है, तो हमें तो अपने कमरे के अंदर या अपने किसी भी लोकेशन के अंदर जो डस्टबिन है ना उसके अंदर जो है वो कचरे को फेंकना था, अपने दिल के अंदर को थोड़ी कचरे को डंप करते रहना था। एनीवे ये एक छोटी सी बात दिल में आ गई थी। तो फरमाए कि कई मरतबा माँ बाप कोई बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि हमने बात की या नहीं की, लिहाजा दोबारा फिर बात कर देते हैं। तो इस वजह से ना इन चीजों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, एक कान से सुने और दूसरे कान से उड़ा दें। यहां से बात शुरू हुई थी कि हर चीज को दिल पे लेकर के बैठ नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेस आउट नहीं होने होते रहना चाहिए हर वक्त हर चीज के ऊपर। हाँ कुछ चीजें होती हैं जो कि यानी एक आम आदमी जो है वो स्ट्रेस आउट हो जाता है, इवन बड़े साबित कदम लोग भी जो है वो बहुत ज्यादा मसला कोई हो जाए तो स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, लेकिन हमने तो गोया कि उसको अपना मशगला बनाया है, मैन अपना जो है ना वो पार्ट टाइम शुगल, या भी आप भी कुछ नहीं करने को मिले, चलो लेट्स लेट्स स्ट्रेस आउट, है ना कुछ करने को ही नहीं है, काम फारिग बैठे हैं, चलो जी चलो स्ट्रेस आउट होते हैं। वो फिजिकली स्ट्रेस आउट नहीं कि जी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे स्ट्रेस आउट होते, नहीं मेंटली स्ट्रेस आउट होते हैं, उल्टा सीधा कुछ सोचना शुरू कर देंगे, उल्टा सीधा कुछ जो है ना वो ख्याली पुलाव बनाने शुरू कर देंगे, अजीब गरीब किस्म का मसला है हमारे साथ। तो भाई फिर फारिग बैठना छोड़े ना, अपने आप को अच्छी चीजों के अंदर लगाएं ताकि आपके पास टाइम ही ना रहे स्ट्रेस आउट करने के लिए अपने आप को मेंटली। अच्छा आगे फरमाते हैं कि अंग्रेज मुआशरे में नौजवान माँ बाप के सामने बहुत अजीब अजीब बातें कर देते हैं, चुनाची रिसर्च में उन्होंने लिखा कि हजारों बूढ़ों का जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें बच्चे की इस बात से बड़ा दुख हुआ कि उसने हमें कहा कि आई वॉन्ट योर प्रॉपर्टी आफ्टर यू डाई, कि मैं आपकी मौत के बाद आपकी जायदाद चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के सामने कई दफा ये आजिज अपना जाती तजुर्बा भी बयान कर चुका है कि शिकागो में एक अपार्टमेंट लिया था तो उसके बराबर में जो है ना वो एक बूढ़ा रहता था, गंद खाना था उसका पूरा का पूरा घर, तो उसके पास मैं कभी चला जाता था तो वो मुझे बताता था कि मेरा बेटा जो है ना वो फलाने शहर में रहता है, वो तो आता ही नहीं है मेरे पास कभी भी, और जो मेरी बेटी है ना वो मेरे पास आती है लेकिन वो सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि उसको मेरा पैसा चाहिए होता है। ठीक है, तो अपना तजुर्बा भी बता दिया, बाकी है कि रिसर्च में इन्होंने जो सवाल किए होंगे तो उसके जवाब भी ऐसे ही होते हैं। तो बच्चे की इस बात से माँ बाप को बहुत दुख होता है कि उसको हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी नजर बस हमारे माल पैसे पे है। मुसलमान मुआशरे में तो बच्चे आमतौर पर ऐसी बात नहीं करते, मगर ये कि कोई बहुत ही बिगड़ा हुआ नौजवान हो, लेकिन कुफर के मुआशरे में ऐसी बातें की जाती हैं। हमारी शामत है आमाल के हम जिस तरीके से दीन से दूर चले गए, और अब रिसेंटली जो है ना वो नया फिनोमेना आया कि अब दीन की तरफ वापस आए तो अपना दीन बना करके, है ना, दीन का हुलिया बिगाड़ करके दीन को जो है ना वो सहाबा कराम और नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम के बताए हुए तरीके से हटा करके अपना एक 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 चीज बना ली जिसको कि हमने दीन कह दिया और अब हम दीनदार होंगे सारे के सारे। 20-30 साल पहले जो है ना वो कोई दीनदार नहीं होता था इल्ला माशाल्लाह, बड़ी से बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है उसके अंदर कोई एक जो है ना वो गलती से तबलीगी जमात वाले में, हमारे खानदान में भी ऐसे ही था, एक साहब थे और सब जो है ना वो उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते थे, वो एक दाढ़ी वाले एक जो है ना वो तबलीग में निकलने वाले थे, है ना। अब देख लें माशाल्लाह सारे के सारे, कोई एक भी शायद ऐसा ना हो जो कि दीनदार अपने आप को ना कहता हो या ये कि दीनदारी वाली काम ना करता हो बहुत सारे, लेकिन एक अजीब और गरीब किस्म का एक दीन है जिसका के यानी सुन्नत में कोई कोई दलील नहीं मिलती उसकी, राइट, और फराइज और वाजिबात इन सब को खास लेना देना नहीं है उस दीन के साथ। ठीक है, तो इस वक्त जो है ना वो फिर ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं कि इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ नौजवान कि जो है ना वो अपने माँ बाप के साथ ऐसा मामला कर रहा है, या ये कि बहुत ही अजीब गरीब किस्म के यानी हालात हैं। तो कुफर के मुआशरे में तो ये सब कुछ हो चुका, अब जो है वो हम भी उनकी दुम में लगने की वजह से अब उन्हीं के रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं। तो फरमाते हैं कि कई मरतबा, अच्छा ये छठा पॉइंट है,
कि कई मरतबा बूढ़े लोग बच्चों के नाम भूल जाते हैं और उनके लिए बच्चों के नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो अगर वो ज़रा उल्टा नाम ले लें तो उस पर माँ बाप के साथ गुस्से का इजहार नहीं करना चाहिए कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारी बेटी का ये नाम है, आप ये क्यों पुकार रहे हैं। तो बुढ़ापे की वजह से नाम भूल जाना या मिलता जुलता नाम ले लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, इस पे उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक औलाद हो तो उसकी औलाद का नाम याद रखना फिर भी आसान होता है बूढ़ों के लिए, लेकिन अगर दो चार औलादें हैं तो उनकी फिर पोते पोतियों के नाम याद रखने जो है वो भी मुश्किल हो जाते हैं। तो उसके ऊपर जो है वो गुस्सा होना, ठीक है कि अब मेरी मेरे मेरे बच्चे का नाम आपको याद नहीं रहता, आपको फलाने के बच्चे का तो नाम याद रहता है। अच्छा, माँ बाप भी जो है ना वो भी माशाल्लाह कभी कभी जुमले भी ऐसे ऐसे बोल देते हैं कि जिसके ऊपर अच्छा खासा इम्तिहान भी हो जाता है औलाद का। तो मुझे फलाने बच्चे से जो है ना वो बस इतनी मोहब्बत है, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत हो के नहीं देती। अभी अभी चंद दिन पहले जो है वो हमारी किसी से मुलाकात हुई तो उनके घर में बाकायदा पता चला कि कहा गया है बच्ची को कि पता नहीं मुझे फलाने बेटे के औलाद के साथ जो है ना वो मोहब्बत है, अब मुझे तुमसे मोहब्बत ही नहीं होगी तेरी, यानी कह दिया। अब खैर अल्लाह आलम के वो बच्चा जो बता रहा है ये वाली बात अपने दादी के बारे में, अब उसमें कितना हकीकत है, लेकिन अगर वाकई उन्होंने बात कही है तो क्या ख्याल है, मजे की बात नहीं है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल कहते हैं लोग इस तरह से, और भी बड़ी बड़ी मजे की बातें कहते हैं, लेकिन औलाद जो है ना वो उन चीजों के ऊपर अपने वालदैन के ऊपर गुस्सा नहीं हो सकती बिल्कुल भी। ठीक है, हमने तो ऐसे भी देखे कि अल्लाह रहम करे, रहने दें चले क्या क्या। तो पॉइंट नंबर 7, सातवां पॉइंट कहते हैं, यानी जो नहीं करना चाहिए, कि माँ बाप को इल्जाम मत दें कि आपकी वजह से ये हुआ और इस वजह से ये हुआ, आपने ऐसे किया तो ये हो गया। माँ बाप को बुढ़ापे में कभी इल्जाम मत दें, यानी जवानी में भी इल्जाम मत दें, लेकिन अभी जो कि ज्यादातर बुढ़ापे की बात हो रही है तो इस वजह से फरमाया कि माँ बाप को बुढ़ापे में ऐसे इल्जाम मत दें, इससे उनको तकलीफ होती है और वो दुखी होते हैं। ठीक है, तो वो बेशक फिंगर पॉइंटिंग इज योर नेशनल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, आपका पूरे की पूरी कौम ऊपर से लेकर नीचे तक इल्ला माशा अल्लाह इल्ला माशा अल्लाह, पूरे की पूरी कौम जो है ना उसका सबसे फेवरेट जो पास टाइम है या फुल टाइम है, पास टाइम ही नहीं फुल टाइम है, वो है फिंगर पॉइंटिंग। ठीक है ना, दूसरे की गलती, उसकी गलती, उसकी गलती की वजह से सब कुछ हुआ, ठीक है ना, और मेरी गलती तो हो ही नहीं सकती, मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ, उसकी गलती की वजह से हुआ। हर चीज, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो यानी खेल में हो, चाहे वो जो है ना वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे जो है ना वो दफ्तर में हो, चाहे घर के अंदर हो, उसकी गलती है। ठीक है, तो बेशक इस तरह रग रग रेशे रेशे के अंदर हमारे फिंगर पॉइंटिंग पैवस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी अपने वालदेन के साथ ना करना ये वाला काम, ठीक है, खुसूसन जब दीनदार बन जाओ ना, ठीक है, तो उसके बाद फिर कम से कम इंटेलेक्चुअली याद रखना, फिर अपने ऊपर मेहनत करना ताकि तुम्हारे अंदर से ये मुसीबत निकल जाए कि हम दीनदार नहीं बने तो आपने हमें दीन सिखाया ही नहीं। ठीक है, आपने हमें दीन सिखाया ही नहीं, आपने जो है वो ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने फलाना ही नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना वो डायरेक्ट पॉइंट आउट करके माँ बाप को ना कहो। हाँ, एक जनरल जो भाई बयान के अंदर बात समझाई जाती है तो वो इसलिए नहीं समझाई जा रही होती कि वो जो है ना वो यानी दुखी हो, या वो भाई इसलिए समझाई जाती है कि भाई आप ये काम ना करें क्योंकि आप भी तो अब वालदैन बन चुके हैं ना, ठीक है ना, तो इस बात को समझें कि भाई आप अपने बच्चों को सिखाएंगे दीन तो उनको दीन आएगा, आप वही गलती ना करें जो कि आपके वालदेन से हो गई या उन्होंने कर दी। ठीक है, ये वाली गलती हरगिज ना करें। तो इस वजह से जो तरबियत के मौजूआत होते हैं उनके अंदर हमारे मशायख ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे, हमारे अजर जी भी खूब उन्होंने ये वाली बातें करी, और पिछले जो बुजुर्ग थे जिन्होंने खानदानी मौजूदात के ऊपर मेहनत करी है, जिन्होंने खानदानी मौजूदात के ऊपर कलम उठाया है या मलफूजात और खुतबात किए हैं, जैसे हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर खूब कलाम किया है इस बात के ऊपर, ठीक है, तो भाई उनकी तो इत्तेबा हमें करनी है लाजमन। ठीक है, अब यह है कि भाई इसका हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं होता कि औलाद जो है वो अपनी माँ बाप के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग शुरू कर दे। ठीक है ना, उनके सामने तो आपने तमीज के दायरे को नहीं छोड़ना है, उनकी गलत बात की इत्तबा नहीं कर सकते, अतात नहीं कर सकते, जहां पे अल्लाह ताला की नाफरमानी आती है, चाहे वो किसी भी शक्ल की नाफरमानी हो, उसमें आप वालदैन की अतात नहीं कर सकते। इसके बारे में तो देर इज नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। ठीक है, लेकिन एक होता है इल्जाम तराशी करना, एक होता है आप यानी ऐसे ऐसे जुमले कस रहे हैं उनके ऊपर, ऐसे ऐसे जो है ना वो ये हरगिज ना करें। दूसरी बात ये कि अगर कोई बुजुर्ग खुद जो है वो इस तरह की बातें सुन रहे हो, ठीक है ना, और वाकई अगर उनको एहसास हो जाए कि हाँ उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है ना वो उनकी औलादों की जो है वो दुनिया और आखिरत बर्बाद हो गई है, ठीक है, तो अब वो क्या करें? तो अब वो ये करें कि भाई गलती को तस्लीम कर लें, और वैसे तस्लीम करेंगे तभी तो उनको अफसोस हो रहा है ना, तभी तो उनको दुख हो रहा है इस बात का कि हाँ मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपनी औलाद के साथ क्या कर दिया, मैंने अपनी सारी जिंदगी के साथ क्या कर दिया, है ना। जो गलती को तस्लीम ही नहीं करता उसने कोई थोड़ी दुखी होना है, उसने कोई थोड़ी नादिम होना है, उसने कोई थोड़ी जो है वो परेशान होना है कि मैंने क्या कर दिया। तो गलती को तस्लीम तो उस बंदे ने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब वो क्या करे? अब तो उसके पास उम्र भी नहीं है, अब तो उसके पास वसाइल भी नहीं है कि वो अपनी औलाद को यानी की हुई गलती को जो है वो ठीक कर सके, अब तो नहीं कुछ कर सकता, अब तो चिड़ियां चुग गई खेत, अब पछतावे क्या होवत, चिड़ियां चुग गई खेत, अब क्या करें? तो भाई अब जो है वो अल्लाह ताला से माफी मांगे, ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह ताला का दरवाजा जो है ना ये बंद नहीं हुआ है, उसके ऊपर माफी का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। इस्तिगफार करे, इस्तिगफार का मतलब होता है माफी मांगना। तौबा तो अब ये कर नहीं सकता, तौबा क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि तौबा में सबसे पहले तो नदामत होती है, दूसरे नंबर पे तौबा की शर्त क्या होती है कि आइंदा नहीं करूंगा। तो भाई आपके पास अब ऑप्शन की तरह करने का, अब तो आपकी उम्र गुजर चुकी, अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेशक तौबा का ऑप्शन अब आपके पास नहीं है, लेकिन इस्तिगफार का ऑप्शन तो खुला हुआ है ना, तो अल्लाह ताला से खूब माफी मांगे, खूब नादिम और शर्मिंदा हो माफी मांगे, और फिर दूसरा काम क्या करे? माफी मांगने के बाद दूसरा काम होता है अल्लाह ताला से मदद मांगे, मदद मांगे कि ऐ अल्लाह मैं बिगाड़ चुका, मैं सब कुछ खराब कर चुका, मैं अब उसको ठीक करने के ऊपर कादिर नहीं हूं, लेकिन ऐ अल्लाह आप ठीक करने के ऊपर कादिर हैं, आप दिलों को बदलने के ऊपर कादिर हैं, आप मेरी औलाद को राह रास्त पे ला दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए और मदद फरमा दीजिए कि मेरी औलाद को राह रास्त पे ला दीजिए, मेरी मेरा किया हुआ बिगाड़ आप बना दीजिए। ठीक है, ये दोनों काम जो है वो अल्लाह ताला के साथ कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे उसके पास कोई भी जिंदगी का अब मोहलत बाकी ना बची हो, लेकिन ये चीज तो उसके पास अभी भी है। तो ये मकसद होता है भाई ये बातें करने का क्लासेस के अंदर ना, ये मकसद होता है कि हम गलत फहमियों से बाहर निकलें और यानी खुद जो है वो गलतियां रिपीट ना करें जो कि पहले हो चुकी हैं और जिससे वो हो चुकी हैं, और अब उसके पास जो है वो वापसी का दरवाजा भी नहीं है, तो वो अल्लाह ताला से फिर रुजू करें। देखें, एक बहुत बड़ा मसला जो कि हम बड़ी कन्वीनियंटली इग्नोर कर रहे हैं ना अपने दीन में से, बड़ी कन्वीनियंटली हम इग्नोर कर रहे हैं, वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई बुराई तुम होता हुआ देखो तो उसको हाथों से रोकने की कोशिश करो। ठीक है, अपने हाथों से रोकने की कोशिश करो, अगर तुम अपने हाथों से उस बुराई को नहीं रोक सकते तो अपनी जुबान से उसको रोकने की कोशिश करो, राइट, और अगर तुम अपनी जुबान से भी उसको नहीं रोक सकते यानी ऐसी सिचुएशन में तुम आ गए हो कि यू जस्ट कैन नॉट इवन से एनीथिंग अगेंस्ट इट, उसके खिलाफ बात भी नहीं कर सकते, फितने के खौफ से, शर के खौफ से, फसाद के डर से तुम बात भी नहीं कर सकते उसके खिलाफ, तो उसको अपने दिल में बुरा समझो। और फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि इससे नीचे ईमान का कोई दर्जा नहीं है, यानी ईमान का लोएस्ट लेवल ये है कि तुम बुराई को बुराई समझो और उसको बुरा बुरा कहो, यानी अपने दिल में बुरा कहो, जुबान से नहीं कह सकते, दिल में बुरा कहो। ठीक है, जब हम बुराई को बुराई समझना छोड़ देते हैं ना, तो वी हैव एक्चुअली गॉन बिलो द लेवल ऑफ ईमान, हम ईमान के दर्जे से नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो जिस दौर जिस जमाने में हम जिंदा है ना, इसमें हम वाकई हाथ से रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, सवाल इसके कि छोटे छोटे बच्चे हों आपके सामने जिनको क्या आप रोक सकते हैं, उसके अलावा आप किसी को नहीं रोक सकते। जुबान से रोकना जो है वो बहुत कम लोगों को आप ऐसी बात कर सकते हैं कि भाई ये काम मत करो, वरना कोई आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, रोक नहीं सकते। ठीक है, समझाना बुझाना, दावत तो तबलीग ये एक अलग चीज है, रोकने वाली चीज नहीं है। दावत तो तबलीग का मतलब रोकना नहीं होता, यहां पर तो रोकने की बात हो रही थी। तो भाई दिल में तो बुरा समझो ना, उसको जस्टिफाई तो नहीं करना शुरू कर दो ना। ठीक है, अगर हम दीन को बदल देंगे ना, दीन की तारीफात को बदल देंगे, दीन के सुनन और जो जो वाजिबात और फराइज हैं उनको हम जो है वो मुस्तहबात के दर्जे में ले आएंगे, तो क्या होगा कि अब हम बुराई को बुराई नहीं समझ रहे, क्योंकि फर्ज को छोड़ देना जो है ये बुराई होती है, हराम का इर्तकाब कर लेना ये बुराई होती है। जब आपने कहा नहीं कुछ नहीं होता, भैया अब आप इसका मतलब है बुराई को बुराई नहीं समझ रहे, तो फिर आपका अपना ईमान कहाँ पे रहा, किस दर्जे पे पहुंच गया? ठीक है, तो इस मिनिमम लेवल ऑफ ईमान को जो है ना हमने संभाल करके रखना है, इसको नहीं हमने खत्म करने देना किसी की भी, कोई भी, चाहे वो दुनिया की मसलहत आ जाए, या दुनिया के हालात कैसी भी हो जाए, मुल्क के हालात कैसी भी हो जाए, फलानी चीज कैसी भी हो जाए, सारी कौम जो है वो बुराई को जो है वो अच्छाई समझना शुरू कर दे, लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते। कुछ हो जाए हम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात की बहुत तफसीर और मिसालें तो इस वक्त मेरे जहन में भी नहीं है और वक्त भी खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप इसको पल्लू से बांध लेंगे ना अपने, तो बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ के लतारा समझ और बल्कि तो आखिर पता फरमाए वाखर दावाना अलहमदुल्ला। आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना कि ये बुक कहाँ से मिलेगी, तो भाई आपको जो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर जवाब दिए हैं उनको आप नहीं पढ़ते हैं, उनको पढ़ते हैं ना, लिखा हुआ है कि भाई आप क्या करें इस काम के लिए, तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस को अपने पढ़ तो लिया करें जब आपने व्हाट्सएप में साइन इन किया हुआ है अपना। तो ठीक है, उसमें बता दिया था आपको, एक मैंने कॉन्टैक्ट भेजा था कि आप उनसे रब्ता करें, उनसे पूछें कि किताबें कहाँ से मिलेंगी। ठीक है, जजाकुम अस्सलाम वालेकुम।